19 जनवरी दिन शनिवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी मुलाकात जल्द होगी।
We've continued to make progress. We're continuing to have conversations. The United States is going to continue to keep pressure and sanctions on.
कोलकाता में ममता बनर्जी की आज महारैली, जुटेंगे विपक्ष के नेता।
देखिए, इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में इस प्रकार हुआ है, लेफ्ट फ्रंट के समय भी उन्होंने सबको बुला करके सभा की है, फिर वो कहाँ है आज खुद का? ऐसे लोग इकट्ठा आ रहे हैं जिनका कोई ना वैचारिक मेल है, ना कोई नीति है, ना कोई कार्य पद्धति है।
विवेचना में करेंगे याद मुगले आजम और के आसिफ को।
प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी महीने के अंत तक उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। उत्तर कोरियाई नेता के साथ ये उनकी दूसरी मुलाकात होगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप की ये मुलाकात परमाणु निरस्त्रीकरण पर केंद्रित हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से परमाणु वार्ता को आगे बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इससे पूर्व दोनों नेता पिछले साल जून में सिंगापुर में मिले थे, उस वक्त भी उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात हुई थी। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में गुरुवार को हुए कार धमाके के पीछे विद्रोही समूह ईएलएन का हाथ था। कोलंबिया की सरकार ने ईएलएन को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। धमाके की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में ज्यादातर युवा पुलिस कैडेट थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कोलंबिया के पीस कमिश्नर माइग्वेल सेबालोस ने कहा कि पुलिस अकादमी पर हुए इस हमले का षड्यंत्र महीनों से रचा जा रहा था। उन्होंने कहा, शुरुआती जांचों से ये समझ आ रहा है कि इस हमले की साजिश लगभग 6 महीने पहले ही रची गई थी। ये थे कमिश्नर सेबालोस के शब्द। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कथित चरमपंथी संगठन बोको हराम ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के रान शहर में भारी तबाही मचाई है। संस्था का कहना है कि उन्होंने सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों का अध्ययन किया है, जिससे पता चलता है कि संगठन ने रान शहर पर हमला किया था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लगातार हो रहे हमलों की वजह से वहां शरण लेने वाले नागरिकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से लोग कैमरून की सीमा पर भाग रहे हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि कैमरून के सैनिक शरणार्थियों को वापस नाइजीरिया खदेड़ रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गुरुवार को सूडान की राजधानी खार्तूम में सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी। मोविया ओथमैन नाम के इस शख्स के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सूडान में हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति ओमर अल बशीर के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। देशव्यापी ये प्रदर्शन पिछले 5 सप्ताह से जारी हैं। प्रदर्शन के दौरान मारे गए शख्स मोविया ओथमैन की बहन सामिया ने पत्रकारों को बताया, वो पास ही के मस्जिद से प्रार्थना करके लौट रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचने वाला था, तभी एक पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ा। मोविया ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने ठीक उसे दरवाजे के पास गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी और खून रोकना मुश्किल हो गया। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। ये थे सामिया के शब्द। मेक्सिको द्वारा दिए जा रहे विशेष मानवीय वीजा के बिना ही सैकड़ों की संख्या में प्रवासियों ने मेक्सिको में प्रवेश कर लिया है। सैकड़ों की संख्या वाले ये लोग अब उस काफिले का हिस्सा बन गए हैं जो अमरीकी सीमा की ओर बढ़ रहा है। इनमें से ज्यादातर होंडुरास से आए हैं और उनका कहना है कि वे गरीबी और हिंसा से बचने के लिए भाग कर आए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अवैध आमद को देश के लिए खतरा बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को मिसाइल रक्षा कार्यक्रमों को विस्तार देने की योजना की घोषणा की थी। ट्रंप की इस घोषणा पर रूस ने चिंता जताई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में इन घोषणाओं को खुले तौर पर टकराव बढ़ाने वाला बताया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। मेरा नाम है संदीप सोनी और आप हमें रेडियो के साथ साथ इस समय bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं लाइव। सब कुछ ठीक रहा तो अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक बार फिर हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। दोनों नेता पिछले साल सिंगापुर में मिले थे और अब शायद वियतनाम में दोबारा मुलाकात हो। कैसे तय हुई ये मुलाकात और क्या है इसके मायने, bbchindi.com की रिपोर्ट सुनिए कमलेश मठेनी से।
व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी महीने के आखिरी दिनों में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से दोबारा मुलाकात करेंगे। इस घोषणा से पहले किम के एक खास आदमी ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने वाले किम जोंग उन के खास आदमी का नाम जनरल किम योंग छोल है, जो उत्तर कोरिया के एक शीर्ष वार्ताकार हैं। ट्रंप और किम जोंग उन की ऐतिहासिक मुलाकात पिछले साल जून में सिंगापुर में हुई थी। संभावना है कि इस बार दोनों नेता वियतनाम में मिल सकते हैं। तब उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात हुई थी, लेकिन तब से अब तक इस दिशा में बहुत मामूली प्रगति हुई है। आगामी मुलाकात के बारे में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने संवाददाताओं को बताया,
We've continued to make progress. We're continuing to have conversations. The United States is going to continue to keep pressure.
हमने प्रगति को जारी रखा है, बातचीत हो रही है। उत्तर कोरिया जब तक पूरी तरह से परमाणु हथियार खत्म नहीं करेगा, अमेरिका उस पर दबाव बनाए रखेगा। हमने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं और उत्तर कोरिया ने भी बंधकों को रिहा करके अच्छे संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को अगली मुलाकात से काफी उम्मीदें हैं। ये थे व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स के शब्द। पिछले साल सिंगापुर में दोनों नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे सही मायने में ठोस कहा जा सके। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने दोनों पक्षों से कहा है कि वे गंभीरता के साथ बातचीत जल्द शुरू करें।
We believe it's high time to make sure that the negotiations between the United States and the...
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश कह रहे थे कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए ये सही समय है। दोनों को गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए, एक रोड मैप तैयार करना चाहिए जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का रोड मैप एकदम साफ हो। बीबीसी संवाददाता बारबरा प्लेटअशर का कहना है कि किम योंग छोल का वॉशिंगटन आना एक अच्छा संकेत है जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की तरफ इशारा करता है। जनरल किम योंग छोल एक पूर्व खुफिया अधिकारी हैं जिन्हें किम जोंग उन का दाहिना हाथ कहा जाता है। अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया की हालिया बातचीत में जनरल किम मुख्य वार्ताकार के तौर पर सामने आए हैं। हालांकि विवादों के साथ भी उनका नाता रहा है। साल 2010 में जब वो सैन्य खुफिया प्रमुख थे तब दक्षिण कोरिया के जंगी जहाजों पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड जनरल किम को ही माना जाता है।
अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दोबारा मुलाकात के लिए राजी हो गए हैं। रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
फरवरी, मार्च और अप्रैल, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 महीने का समय बचा है और फिर पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव होंगे। चुनाव से पहले अभी तक जो तस्वीर नजर आ रही है वो कुछ इस तरह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कोशिश ये हो रही है कि विपक्षी दल पूरी तरह से एकजुट हो जाएं, एकजुट नजर आएं। उसी कड़ी में कोलकाता में आज एक बड़ी रैली होने वाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ विपक्ष के कई नेता एक ही मंच पर नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ दिलनवाज पाशा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुलावे पर आज देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेता यूनाइटेड इंडिया रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। इस साल मई में होने वाले आम चुनावों से पहले इसे बड़ी मोदी विरोधी रैली माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के अलावा बीजेपी के बगावती तेवर दिखाने वाले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, DMK नेता MK स्टालिन रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी ने इस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत की शुरुआत कहा है, लेकिन भाजपा इसे थके हुए नेताओं का जमावड़ा मान रही है। पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं,
नहीं देखिए, इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में इस प्रकार हुआ है, लेफ्ट फ्रंट के समय भी उन्होंने सबको बुला करके सभा की है, फिर वो कहाँ है आज खुद का? ऐसे लोग इकट्ठा आ रहे हैं जिनका कोई ना वैचारिक मेल है, ना कोई नीति है, ना कोई कार्य पद्धति है, केवल बीजेपी विरोध के लिए, इससे भी आगे बोला जाए तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लोग एक साथ आए हुए हैं, मोदी की दर से एक जगह आए हुए हैं, इसलिए इससे कुछ अच्छा निकलने वाला नहीं है, ना तो देश के लोग इनके ऊपर भरोसा करते, और ऐसे ऐसे नेता लोगों को ला करके वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं जो या तो रिटायर्ड या तो टायर्ड, जो अपने प्रदेश में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, समर्थन नहीं है, वो यहाँ आ रहे हैं, वहाँ रिजेक्टेड, यहाँ प्रोजेक्टेड।
इस मेगा रैली में मंच पर दो नेताओं की गैर मौजूदगी खलेगी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती। ये नेता स्वयं मौजूद रहने के बजाय अपने प्रतिनिधि रैली में भेज रहे हैं। तो क्या एक मंच पर विपक्ष के कई प्रधानमंत्री पद के दावेदार ना दिखे इसलिए ऐसा किया गया है? इस सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक कहती हैं,
देखिए कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पद का दावा वही करे जिसका सबसे बड़ा जन समर्थन जिसे मिले 2019, और इसमें मैं समझती हूँ कि कोई दो राय नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि हर बड़े दल, राजनीतिक दल चाहे वो या राष्ट्रीय हो, उसका जो नेतृत्व कर रहा है उसकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, किसी की महत्वाकांक्षा को खत्म करना कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, पर अंततः तो ये जनता जनार्दन निर्धारित करेगी। कई जगह पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकते हैं, और दोनों ही किस्म के गठबंधन आज की राजनीति का यथार्थ।
वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुधेंद्र भदौरिया ने बताया कि उनकी पार्टी भी इस रैली में शामिल होगी।
देखिए अच्छी बात है कि सभी पार्टियां एकजुट होकर मोदी जी के इस बार हराने की कोशिश कर रही हैं वहां पर बंगाल में, और ये बंगाल के लिए जो हो रहा है ममता जी कर रही हैं अच्छी चीज है, उसमें सभी विपक्ष के लोग जा रहे हैं, हमारी पार्टी की ओर से कोई न कोई जरूर जाएगा उसमें। इस समय जो वहां पर प्रधानमंत्री का तो चुनाव है नहीं, वहां पर तो मोदी जी को कैसे हराया जाए इसके लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, और जब उसका अवसर आएगा तो उसके उत्तर भी हम देंगे।
आम चुनावों से पहले देश में कई राजनीतिक गठबंधन बन बिगड़ रहे हैं, ऐसे में इस रैली में क्या गठबंधन का कोई नया सूत्र निकलेगा ये देखने की बात होगी। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
ममता बनर्जी की इस रैली से पहले कोलकाता की क्या तस्वीर बन रही है और इस रैली के क्या कुछ और दूसरे पहलू हैं, जानने के लिए दिलनवाज पाशा ने कोलकाता में बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली से बात की।
पिछले करीब 7-10 दिन से ही इसका तैयारी, फाइनल दौरे का जो तैयारी है वो शुरू हो गया है, और लाखों लोग आ चुके हैं। दूरी जो जिले हैं उत्तरी बंगाल के, इन सब जिलों से ये लोग आ चुके हैं, परसों से आ रहे हैं लोग, और इनके रहने के लिए बड़े बड़े टेंट लगाया गया 2-3 जगह पे, और खाने का भी इंतजाम हो रहा है, और कोलकाता और सटे हुए जिलों से लाखों लोग जो है वो आज सुबह से ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ओर जाने लगेंगे। सुबह से पूरी शहर जो है वो उसका स्वाभाविक जनजीवन जो है पूरी तरह से ठप होने का शंका तो है।
विपक्ष अपनी एकता दिखाने की कोशिश पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन कोलकाता में हो रही ये बड़ी रैली जिसमें लाखों लोगों के जुटने की संभावना है, राजनीतिक हलकों में इस रैली को कैसे देखा जा रहा है?
देखिए ये तो महत्वपूर्ण रैली है ही है, क्योंकि कोलकाता में आज जो रैली होने जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए कोलकाता में आ पहुंचे हैं एचडी देवेगौड़ा, कुमारस्वामी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आना है, शरद पवार आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, एमके स्टालिन, मतलब कि कोई ऐसा नाम नहीं है विपक्षी दलों का लीडर जो रैली में शामिल नहीं होने जा रहा है। अखिलेश यादव भी आ चुके हैं और यशवंत सिन्हा से तो भी आना है इनको, तो ये जो पूरी एक यूनाइटेड अपोजिशन की एक चेहरा ये लाखों लोगों के सामने शनिवार को दिखेगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक मैसेज जो जाना है इनसे कि बीजेपी के खिलाफ जितने भी पार्टियां अपने अपने राज्यों में पावरफुल है, स्ट्रांग है, वो एक साथ जुड़ रहे हैं।
लेकिन इसमें राहुल गांधी और मायावती मौजूद नहीं होंगे तो क्या उनकी कमी महसूस की जा रही है?
पहली बात तो राहुल गांधी शामिल शायद इसलिए नहीं हो रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल की कांग्रेस है ये बोल ही रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही उनका राजनीति जो है वो है। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेतृत्व नहीं चाह रहे थे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट या सोनिया गांधी ये आए इसमें, इस रैली में। तो इन्हीं का जो चाहत ये इसको मान्यता देते हुए राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज रहे, खुद नहीं आ रहे। और जो बात रही मायावती की, ये मायावती भी सतीश मिश्रा को, वो भी एक अपने आप एक बड़े लीडर है बसपा के, तो वो आ रहे हैं इस रैली में भाग लेने के लिए। और मोटे तौर पे बाकी जो लीडर है तमिलनाडु से लेकर के उत्तर प्रदेश, गुजरात से जिग्नेश मेवानी और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, गेगोंग अपांग जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी आए हैं। तो सारे लोग एक जो जुड़ रहे हैं, ये एक अलग से मैसेज तो है ही है। पर हाँ, ये सही बात कि कांग्रेस सुप्रीमो और बीएसपी सुप्रीमो नहीं शामिल हो रहे इस रैली में।
कोलकाता में ममता बनर्जी की आज महारैली, जुटेंगे विपक्ष के नेता। ये थे कोलकाता से बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली।
आम चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। उत्तर प्रदेश में क्या फिर चलेगा मोदी का जादू, या सपा बसपा का मेल बिगाड़ेगा बीजेपी का खेल? इस गठबंधन को कितनी खलेगी कांग्रेस से दूरी? इंडिया बोल में होगी पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 19 जनवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। और वक्त हो चला है ये जानने का कि दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या सुर्खियां बयां कर रहे हैं। भूमिका राय तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं।
संदीप, एक और जहां ममता बनर्जी आज देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ मोदी विरोधी रैली करने जा रही हैं, वहीं कर्नाटक का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये खबर आज के ज़्यादातर अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन उसमें 4 विधायक जो थे वो गैर हाजिर रहे।
किसी एक की तबीयत भी खराब थी उसमें।
जी, और ये 4 विधायकों का गैर हाजिर रहना कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा जो कर्नाटक में गठबंधन सरकार को गिराने की कथित कोशिशें हो रही हैं, उन्हें नाकाम करने के लिए और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए विधायकों की ये बैठक बुलाई थी। ऐसे में 4 विधायकों का नहीं आना कांग्रेस के लिए चिंता की बात रही। और आर्थिक आरक्षण के खिलाफ कोर्ट पहुंची डीएमके, केंद्र सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापी है। इसी अखबार के एक अन्य खबर की बात करें तो केरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब तक 51 महिलाएं सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर चुकी हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है जब केरल सरकार ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर महिलाओं की एक संख्या बताई है। हालांकि अभी जब ये 2 महिलाओं के प्रवेश को लेकर के बहुत विवाद हुआ, उसके बाद ये संख्या आई, और ये एक याचिका के बाद ये संख्या जो है वो बताई गई है। चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है, और लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 3 जून को ख़त्म होगा। ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की। इसी अखबार की एक और खबर मैं आपको बताते चलूं तो आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी दूसरी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी के संयोजक गोपाल राय ने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। और इसके अलावा कांग्रेस ने TOI की खबर है, कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से रफाल की ज़रूरत से कम और 41% महंगी खरीद का मुद्दा उठाते हुए जांच की मांग की है। और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है उससे जुड़ी एक खबर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। तो ये आज के प्रमुख अखबारों की प्रमुख सुर्खियाँ थी। संदीप,
बहुत शुक्रिया। हाल ही में यासिर अब्बासी की किताब प्रकाशित हुई है, ये उन दिनों की बात है, ये किताब का नाम है। इस किताब में उन्होंने पुरानी उर्दू पत्रिकाओं में छपे नामचीन फिल्मी हस्तियों के अपने साथियों के बारे में लिखे लेखों और आप बीती को प्रकाशित किया है। उन्हीं में से एक थे मशहूर फिल्म निर्देशक के आसिफ, आप जानते हैं, जिन्होंने मुगले आज़म जैसी फिल्में बनाई हैं। आज की विवेचना में रेहान फजल के आसिफ और फिल्म मुगले आज़म से जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों को याद कर रहे हैं।
یہ عدالت دیوانے جذبات میں ابلتی ہوئی محبت کی دلیلیں سننا نہیں چاہتی، انارکلی چاہتی ہے،
اور انارکلی کو میں دینا نہیں چاہتا۔
تو پھر نسل تیمور کے جاہو جلال کی قسم، تم اس عظیم الشان تخت و تاج سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے۔
مجھے یہ منظور ہے، لیکن وہ تخت منظور نہیں جس کے پائے انارکلی کے جنازے پر رکھے ہوں، وہ تاج جس کی کلقی میں خود میرا ہی دل پیوست ہو، مجھے منظور نہیں۔
معلوم ہوا کہ تم اپنی محبت کی آگ میں مغلوں کا تاج پگھلا کر ایک رقاصہ کے پیروں کی بازیب بنانا چاہتے ہو۔
دلیپ کمار اور پرتھوی راج کپور کے بیچ اس کلاسک سین کو فلمایا تھا لیجنڈری نردیشک کے آصف نے۔ اس سمے 1.5 کروڑ روپے کے لاگت سے 10 سالوں تک بنی اس فلم کے بڑے کینواس کی کلپنا کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا صرف کریم الدین آصف کے بوتے کی ہی بات تھی۔ آصف نے اپنے جیون میں صرف 2 فلموں کا نردیشن کیا، 1944 میں آئی پھول اور مغل اعظم، لیکن اس کے باوجود ان کا نام بھارتیہ فلم اتہاس میں ہمیشہ سورناکشروں میں لکھا جائے گا۔ حال ہی میں پرکاشت پستک یہ ان دنوں کی بات ہے کہ لیکھک یاسر عباسی بتاتے ہیں۔
مغل اعظم میں کم سے کم 100 بار دیکھ چکا ہوں، لیکن آج بھی ٹی وی پہ آتی ہے تو میں چینل چینج نہیں کر پاتا ہوں۔ کمال کا ویژن، کمال کا پیشن تو خیر ان کا سب کو پتہ ہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے اس کو ٹاپ کرنا بڑا مشکل ہے، صرف مغل اعظم کے بارے میں ہی اگر بات کی جائے تو۔
یوں تو اس فلم کا ہر پکش مضبوط ہے، لیکن اس فلم کو درشکوں کے بیچ لوکپریہ کرنے میں بہت بڑی بھومکا نبھائی تھی اس کے ڈائیلاگس نے۔ یاسر عباسی نوشاد کو یہ کہتے بتاتے ہیں کہ انارکلی کو زندہ چنوائے جانے سے پہلے کے درشے میں اکبر ان سے ان کی آخری اچھا پوچھتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک رات کے لیے بھارت کی ملکہ بننا چاہتی ہیں۔
جب ڈائیلاگ سٹنگ ہوئی تو یہ تینوں رائٹرز، امان صاحب ایکچولی زینت امان کے والد بھی، تو امان اللہ صاحب، احسن رضوی صاحب اور وجاہت مرزا، یہ تین لوگ سٹوری سٹنگ میں تھے۔ تو پہلے احسن رضوی صاحب اور امان اللہ صاحب نے اپنے اپنے ورژن سنائے، آصف صاحب نے سنے، اور پھر وہ وجاہت مرزا صاحب کی طرف پلٹے کہ بھئی اب آپ اپنا سنائیے۔ تو وجاہت مرزا صاحب ایک پاندان رکھتے تھے، انہوں نے اپنا پاندان کھولا اور پاندان میں سے ایک وہ پرچی نکالی اور منہ میں جو پان تھا وہ تھوک کے بولے کہ باقی جو لوگوں نے کہا یہ سب بکواس ہے، اتنا لمبا چوڑا بھاشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، انارکلی صرف ایک چھوٹی سی چیز کرے گی، سلام کرے گی اور کہے گی کہ یہ قنیز جلال الدین محمد اکبر کو اپنا خون معاف کرتی ہے، بس ایک سمپل سی لائن میں یہ پوری چیز کنوے ہو جائے گی۔ اور سارے لوگ مطلب واہ واہ کرنے لگے اور اپنی پرچیاں پھاڑیں، وجاہت مرزا صاحب کو گلے لگا۔
شہنشاہ کی ان بے حساب بخششوں کے بدلے میں یہ کنیز جلال الدین محمد اکبر کو اپنا خون معاف کرتی ہے۔
جب موہے پنگھٹ پہ نند لال چھیڑ گئے گانا فلمایا جا رہا تھا تو سب کو سندیہ تھا کہ مدھوبالا اتنا اچھ کوٹی کا کتھک کر بھی پائیں گی یا نہیں، کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ نرتیانگنا تو تھی نہیں۔
جب وہ ریکارڈ کر رہے تھے یہ گانا موہے پنگھٹ پہ تو آصف صاحب اور لچھو مہاراج دونوں ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھیے نوشاد صاحب، کچھ اس طرح کا گانا کمپوز کیجئے کہ نواب واجد علی شاہ کے دربار میں جو ٹھمری اور دادرا ہوتا تھا کچھ اس سے ملتا جلتا کچھ ہونا چاہیے، تاکہ ہم بھی انسپائر ہوں، ہمیں بھی کچھ اپنا جوہر دکھانے کا موقع ملے۔ تو سن کے نوشاد صاحب نے لچھو مہاراج سے کہا کہ آپ کتھک کروانا چاہتے ہیں مدھوبالا سے، لیکن کتھک کی ریکوائرمنٹ تو ایکسپرٹیز ہے اور مدھوبالا کیسے کر پائیں گی وہ ہاؤ بھاؤ اور فیشیل ایکسپریشنس اور وہ کیسے کر پائیں گی؟ تو لچھو مہاراج نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ میں کروا لوں گا اور وہ بالکل فرسٹ کلاس کریں گی۔ انہوں نے ریکارڈ کیا نوشاد صاحب نے اور بالکل ویسے ہی ہوا، مدھوبالا نے زبردست ڈانس کیا اس میں۔
اعظم فلم کا سب سے مشہور گانا تھا پیار کیا تو ڈرنا کیا، اس کو لکھنے اور سنگیت میں ڈھالنے میں نوشاد اور شکیل بدایونی کو پوری رات لگ گئی۔
جب لکھنے کی باری آئی، کمپوز کرنے کی باری آئی تو اس کو لکھنا سب سے بڑی چیز تھی کریک کرنا، جو مشکل تھا۔ تو نوشاد صاحب اپنے گھر پہنچے، شکیل صاحب کو اپنے گھر پہ بلایا، وہ 6 بجے اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ بند کر دیا اور پوری رات کوشش جاری رہی اس گانے کو لکھنے کی، تمام اور شاعروں کے شعر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تھا کچھ۔ کرتے 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 آدھی رات گزرنے کے بعد बाद नौशाद साहब को याद आया कि बचपन में एक पूर्वी का कोई गाना सुना था, प्रेम किया का चोरी की, तो वो उन्होंने शकील साहब से जिक्र किया और शकील साहब को बहुत पसंद आया, तो उसके बेसिस पे शकील साहब ने फिर उसको इलैबोरेट करके पूरा गाना लिखा। वो गाना खत्म करके वो लोग सुबह कमरे से बाहर निकले तो सुबह का सूरज निकल रहा था।
एक दिन आसिफ ने नौशाद से कहा कि वो स्क्रीन पर तानसेन को गाते हुए दिखाना चाहते हैं। सवाल उठा कि इसे गाएगा कौन। नौशाद ने कहा कि इसे उस समय के तानसेन बड़े गुलाम अली खान से गवाना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे।
आसिफ साहब ने कहा कि वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाइए। तो ये दोनों लोग पहुंचे, उन्होंने तारुफ कराया, ये आसिफ साहब हैं और ये चाहते हैं कि आप इसमें एक तानसेन के लिए गाना गाएं। तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा कि भाई नौशाद साहब, कोई और म्यूजिक इवेंट वगैरह हो तो आप मुझे बुला लीजिए, फिल्मों के लिए मैं नहीं गाता क्योंकि बड़ी उस बंदिशों में गाना पड़ता है और मुझसे इस तरह से नहीं हो सकता। ये कह ही रहे थे कि एकदम से बीच में आसिफ साहब खामोश खड़े सुन रहे थे, फिर उन्होंने कहा था कि नहीं खान साहब, गाना तो आप गाएंगे। तो बड़े गुलाम अली खान साहब नौशाद साहब को बाहर ले गए कमरे के और कहा कि भाई आप ये किस सन के आदमी को ले आए हैं, मैं मना कर रहा हूँ नहीं गाऊंगा, ये क्या मुझसे जबरदस्ती गवाएंगे और मैं इनसे इतनी बड़ी फीस मांगूंगा कि भाग खड़े होंगे। तो खैर ये लोग कमरे में वापस गए और इन्होंने आसिफ साहब से कहा कि अच्छा आप मुझे पैसे देंगे, 25,000 रुपए लूंगा, बताइए। आसिफ साहब ने फौरन चुटकी बजाई। अच्छा आसिफ साहब के बारे में एक वो मशहूर था कि वो सिगरेट पीते थे और ऐश झाड़ने के लिए चुटकी बजाते थे, तो उन्होंने चुटकी बजाई और कहा कि बस 25,000, आप तो नायाब हैं, आप तो जो मांगते वो दे देते। खान साहब ने नौशाद साहब की तरफ देखा, उन्हें हैरानी हुई क्योंकि उस वक्त में 300 से 1,000 रुपए तक का एक स्टैंडर्ड बड़े से बड़ा सिंगर पैसे लेता था, 25,000 कोई कंपेरिजन ही नहीं है। और ना सिर्फ आसिफ साहब ने उस गाने के लिए 25,000 रुपए दिए बल्कि एक और गाना रिकॉर्ड कराया और उसके भी 25,000 रुपए दिए।
मुगले आजम बनने के अंतिम चरण में मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच बातचीत बंद हो गई थी क्योंकि मधुबाला ने अपने परिवार के दबाव के चलते उनका शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। फिल्म में दुर्जन सिंह का रोल करने वाले अजीत ने एक बार लिखा था,
एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। जब कैमरा रोल हुआ तो दिलीप कुमार ने मधुबाला को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वहां मौजूद सारे लोग स्तब्ध रह गए। शॉट तो ओके हो गया लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या होगा। क्या मधुबाला वॉकआउट कर जाएंगी, क्या शूटिंग रोकनी पड़ेगी। इससे पहले कि मधुबाला कुछ कहती, आसिफ उन्हें कोने में ले जाकर बोले, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ये साफ हो गया है कि वो अभी भी तुम्हें प्यार करता है। एक आशिक के अलावा कोई अपनी माशूका से ऐसा कैसे कर सकता है।
मुगले आजम अपने जमाने की सबसे महंगी और सबसे सफल फिल्म थी लेकिन इस फिल्म का निर्देशक के आसिफ ता उम्र एक किराए के घर में रहा और टैक्सी पर चला।
शाहपुर जी से नौशाद साहब ने एक बार पूछा, जब शाहपुर जी बहुत तंग आ गए थे, कि अगर आपको इतनी शिकायत है आसिफ साहब से तो आपने उनके साथ कोलैबोरेट क्यों किया, क्यों आपने उनके साथ मुगले आजम बनाने का फैसला किया और क्यों अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शाहपुर जी ने ठंडी सांस ली और बोला कि नौशाद साहब एक बात बताऊं, ये आदमी ईमानदार है, मतलब इसने इस फिल्म में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है लेकिन अपनी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं डाली है, पूरा का पूरा फिल्म इस्तेमाल करा दिया। बाकी सारे आर्टिस्ट वगैरह ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कई दफा रिवाइज करवाया क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा था लेकिन इस आदमी ने बिल्कुल भी कोई धोखाधड़ी नहीं की, कोई पैसे का बन नहीं किया। कोई और होता 10-20 लाख रुपए मार लेता लेकिन इसने नहीं किया। ये आज भी चटाई पे सोता है, टैक्सी में 6 आना पर मील का किराया देके सफर करता है, सिगरेट भी जो पीता है वो दूसरों से मांग के पीता है। ये आदमी 20 घंटे तक लगातार खड़ा होके काम करता रहता था।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं।
BBC समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी महीने के अंत तक उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन से मुलाकात कर सकते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में गुरुवार को हुए कार बम धमाके के पीछे विद्रोही समूह ईएलएन का हाथ था। कोलंबिया की सरकार ने ईएलएन को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कथित चरमपंथी संगठन बोको हराम ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के रान शहर में भारी तबाही मचाई है। मेक्सिको द्वारा दिए जा रहे विशेष मानवीय वीजा के बिना ही सैकड़ों की संख्या में प्रवासियों ने मेक्सिको में प्रवेश कर लिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण भारतीय समय अनुसार, समय जानते हैं आप, हर दिन की तरह शाम 7:30 बजे आज होगा बीबीसी इंडिया बोल, रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।